फिर अगर वो आपसे झगड़ा करें, ए नबी अगर ये लोग आपसे झगड़ा करें इस बारे में आके कि तुमने कहां से ये कर लिया, और बहसें करने लगे दीन के मामले में, क्योंकि बाज लोगों के सिर्फ काम होता है बहस करना, वो सीखना कुछ नहीं चाहते। आपको भी ये देखना चाहिए कि मैं इल्म ले रही हूं ना, तो बहसें करने के लिए ना ये इल्म लूं, कि जिस मजलिस में जाऊं वहां पे बहस शुरू कर दूं, वो वाले शोशे निकाल निकाल के लेकर आऊं जिसका मुझे पता है कि अब ये इससे मैं अपनी जरा काबिलियत बताऊं ना, कि देखो मैंने कितना अच्छा सीखा। तो बाज लोगों जब नया नया दीन, ये बड़ी खतरनाक बात होती है, जब नया नया हम सीखने लगते हैं ना, दीन समझने लगते हैं, इल्म लेने लगते हैं, तो फिर जहां बैठते हैं वहां पे हम ना कोई ऐसी चीज निकाल के ले आते हैं कि लोगों को हक्का बक्का रह जाएं और हमारी तरफ देखें और हमसे सुने, और हम नहीं नहीं कोई बात निकाल लाए, और फिर वो बहसें करते हैं। बहस में नहीं उलझना, यहाँ पे बता दिया गया इस्लाम में ये आपका काम क्या है, वो आगे आ रहा है, मगर जब कोई बहस करे तो आगे से क्या जवाब देना, फकुल असलम तु वजही लिल्लाही, मैंने आप ए नबी कह दें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा गया, आप कह दें मैंने सुपुर्द किया अपनी जात को, अपने चेहरे को अल्लाह के लिए। चेहरा जब कह दिया ना, तो चेहरे में सब कुछ आ गया, मेरी जुबान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग, ठीक है, ये सब चेहरे में है, मैंने अपने आप को अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया, ये आपका जवाब होना चाहिए। यानी मुझे तो अल्लाह ने जो हुक्म दिया भाई मैं तो वो मान रही हूँ, मुझे नहीं इन चीजों से कुछ, मुझे झगड़ा नहीं करना, ये नहीं कि बहस में बहस किए जाए, ये नहीं कि बाल की खाल उतारे। वमन तबानी, और जिसने मेरा इत्तबा किया, ये नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि ऐ नबी आप कह दें कि मैंने भी अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया, और जिसने मेरी इत्तबा की वो भी इन्हीं लाइंस पे चलने वाला है, वो भी मुझे इसी तरह फॉलो करता है, कि वो भी जो मेरा फॉलोअर है, इसका मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है तो क्या करना पड़ेगा, जो मेरा फॉलोअर है वो भी क्या करता है, वो भी असलम तू वजही लिल्लाह, वो भी कहता है मैंने अपना चेहरा अल्लाह के आगे झुका दिया बस। हाँ मैंने कोई मुकाबले करने हैं यहाँ पे ना, देखिए पिछले लोग क्या कर रहे हैं, मुकाबले मुकाबलेबाजियां चल रही, जिदें चल रही हैं एक दूसरे के ऊपर गलबा पाने की, मैं जब डिबेट हो रही हो तो मैं ऊपर आ जाऊं, मैं विन करूं, तो वो नहीं ऐसे करते हैं। वो बात पहुंचाते हैं और वो कहते हैं कि बस आप जितनी भी बहस करना चाहें, मैंने अपना चेहरा अल्लाह के आगे सबमिट कर दिया, यानी मैं अल्लाह की इताअत गुजार हूं, मुझे तो जो बात समझ आई है, जो बात अल्लाह का हुक्म है, बस मैंने तो वो मानना है, ना तफरकाबाजी में पड़ना है ना कोई और पैसों में। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया, आपको भी यही हुक्म हुआ, और आपको ये हुक्म हुआ कि आप कह दें कि मेरे फॉलोअर्स भी यही करेंगे, वो भी ऐसा ही काम करने वाले हैं। वकुल लिल्लदीना उतुल किताब वल उम्मीयीना असलम तुम, आप कह दीजिए उन लोगों से जो दिए गए किताब, वो अपने आप को पढ़े लिखे समझते थे जो किताब दिए गए थे, वल उम्मीयीना, और उम्मी लोगों को कह दें, वो जो मुशरिकीन मक्का थे ना, उनको ये लोग उम्मी समझते थे जो अहले किताब थे, कि तुम क्या हो, तुम्हारे पास तो कोई किताब ही नहीं, असल तो किताब तो हमारे पास आई है, हम हैं पढ़े वाले लोग, आप दोनों से कह दें। और हमारे जमाने में क्या, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल्स, अपने आप को बहुत बड़े समझते हैं कि हम, हमारे पास इतनी डिग्री हैं, और जो नहीं कुछ पढ़े हुए, असलम तो क्या तुम इस्लाम लाए, क्या तुमने अपने आप को सबमिट कर दिया, सुपुर्द कर दिया अपने आप को, फा इन असलम, फिर अगर वो सुपुर्द कर दें, वो सबमिट कर दें, फकत देता था तो वो हिदायत पा गए। देखिए ना, जो अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दे, झुका दे, इस्लाम क्या है बताएं, इस्लाम क्या है, इस्लाम है अपनी मर्जी, अपनी अकल, अपनी समझ, अपना इरादा, अपनी खुशी, अपना गम, सब कुछ अपनी सारी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के ताबे कर देने का नाम, ये है इस्लाम। अगर नहीं आज तक पता था तो अब पता कर लें कि जिस मजहब को हम मानते हैं वो क्या चीज, क्या है वो, उसकी हमसे क्या डिमांड है, समझ आए। हाँ ये नहीं कि हम इस मजहब को अपने मुताबिक एडजस्ट करें, हमने अपने आप को इसके मुताबिक एडजस्ट करना है, हमने अपने आप को इसके मुताबिक लाना है, ये नहीं कि इसको ट्विस्ट करके और अपने मतलब का बनाए, समझ आई बात। तो असलम तुम, या तुम इस्लाम लाए, तुमने अपने आप को ऐसे, अब इस डेफिनेशन के अंदर देखें, क्या तुमने सरेंडर कर दिया अपनी हर चीज को कि अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होगी, असलम हो फकत देता तुम, ना यही तो इम्तिहान है, आप कहते हैं बहुत मुश्किल है, तो आपका मतलब है जन्नत में जाना आसान है? दिल में ये जो तंगी आ रही है ना, इसको दूर कर देंगे? बहुत मुश्किल है, नहीं ये तो बड़ा मुश्किल है, ये कहना आसान है करना बड़ा मुश्किल है। नहीं ये शैतान की बातें, करना बड़ा मुश्किल है, नहीं करना मुश्किल नहीं है, अल्लाह ने ये दीन इंसानों के लिए ही उतारा है और कयामत तक के लिए ही उतारा है, ये इसके लिए नहीं है कि कुछ 4 दिन के लिए, ये उस जमाने के लिए नहीं था सिर्फ, बल्कि ये कयामत तक के लिए है और इसके ऊपर अमल करना भी मुमकिन है। अल्लाह ताला को वो कायम हम बिल किस्त है, वो कभी हमें ऐसे ही काम ना करने को कहता जो हम कर ना पाते, इंसाफ है उसकी सारी बातों में। तो अगर वो इस सपोर्ट करते हैं तो क्या है, फिर फरमाया फकत देखता तो वो हिदायत पा गए, उन्होंने राह पा ली, वह इन तबल्लो इन्नमा आले कल बलाग। और अगर वो मुंह मोड़ जाए तो आपके जिम्मे क्या है, झगड़ना बहसें करना उनके साथ उलझना? नहीं, आपके जिम्मे क्या है, अल बलाग, सिर्फ पहुंचा देना। वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद, अल्लाह देखने वाला अपने बंदों को, वो खुद ही देख लेगा, वो देख रहा है कि कौन मुंह मोड़ के जाता है, किसके दिल में तंगी आ रही है, कौन एक्सेप्ट करने को तैयार है, कौन कौन दिल में कुशादगी पाता है कि हाँ यही बेस्ट है, यही मेरे अल्लाह ने मेरे लिए दीन चूज किया, इस इसमें हर चीज, इसमें मेरे लिए हिकमत है, मेरे लिए बेहतरी है, इसमें किसके दिल में ये वुसअत है, और कौन है जो बस बोल तो रहे हैं कि हाँ इस्लाम हमारा दीन है, लेकिन उनका दिल नहीं चाहता कि इस्लाम के ऊपर चले, बस इस्लाम नाम का दीन काफी है कि हम इस रिलीजन के खाने में इस्लाम लिखते हैं, उसके आगे नहीं हमें चाहिए इस्लाम। कौन ऐसे हैं, अल्लाह देख रहा है, बिल इबाद सारे बंदों को देख रहा, सब ही उसके बंदे हैं ना। इन लदीना यकफुरूना भी आयात इल्ला, बेशक वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, इनकार करते हैं अल्लाह की आयात का, अल्लाह की आयात से बोझ व इनाद रखते हैं, अल्लाह की आयात उनको पसंद नहीं आती, अल्लाह के अहकाम उनके लिए लगते हैं कि अल्लाह माफ करे जालिमाना है। वह यकतुलूना नबी ना बेगैर हक, और वो कत्ल कर देते हैं नबियों को ना हक, नबियों को ना हक क्यों कत्ल करते हैं, ना हक मतलब ये कि विदाउट एनी रीजन ऐसे ही बस कत्ल कर देना, ना हक क्या, ना ये उनका क्या कसूर है, कोई कसूर नहीं है, और उनको कत्ल कर रहे हैं। बनी इसराइल ने ये किया था ना, उन्होंने तो एक एक दिन में 40 40 अंबिया को कत्ल किया, उन्होंने इतने सारे नबी उनके पास आए जिनको कत्ल कर दिया था, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती थी ना इनकी बात। देखिए आप यहीया अलैहिस्सलाम का वाकया, यहीया अलैहिस्सलाम को भी इन्होंने कत्ल किया था, एक बादशाह ने अपनी माशूका के कहने पर। तो ये इस तरह इन्होंने बहुत जुल्म किए। तो अब वो पता है जो कयामत के दिन सबसे बड़ा अजाब उसको होगा जिसने किसी नबी को कत्ल किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था ये, तो आपने ये फरमाया था, या नेकी का हुक्म देने वाले और बुराई से रोकने वाले को जिसने कत्ल किया, फिर आपने यही आयत तिलावत फरमाई थी, फिर आपने फरमाया कि और हज़रत अबू उबैदा से कि बनी इसराइल सुबह के अव्वल वक्त में 43 नबियों को कत्ल कर दिया था उन्होंने, तो बनी इसराइल के 112 इबादत गुजार उलमा खड़े हुए, उन्होंने उनको नेकी का हुक्म दिया और बुराई से रोका, तो बनी इसराइल ने दिन के आखिरी हिस्से में उनको भी कत्ल कर दिया। ठीक है, तो ये उलमा को कत्ल करना, ये बनी इसराइल का ये भी एक तरीका रहा है, और आप सूरह बकरा में देख चुके हैं। वह यकतुलून अल्लदीन यामुरून बिलकिस्त मिन अन्नास, और उन लोगों को भी कत्ल कर देते हैं जो उनको इंसाफ का हुक्म दे लोगों में से, यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो लोग खड़े हुए, उन्होंने उनको बुराई से मना किया, उनको भी कत्ल कर दिया। अच्छा, आज अंबिया तो नहीं है, मगर अंबिया के वारिस किसको कहा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उलमा जो है वो अंबिया के वारिस है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और भी हदीस है, आपने फरमाया मेरी उम्मत के जो उलमा है वो बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। ठीक है, कितनी बड़ी फजीलत है, कितनी बड़ी फजीलत, क्या फरमाया, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है। और आज आप देखें, ठीक है अंबिया नहीं है और ना ही कोई नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाला है, लेकिन जो भी बुराई से रोके और लोगों को इंसाफ करने की तरफ बुलाए आज देखें कि उसके साथ क्या होता है। ऐसे उलमा को धमकियां दी जाती हैं, और ऐसे भी मुल्क हैं जहां पे ऐसे उलमा कोई बात कहें तो सबको पता है कि वो कौन से मुल्क हैं जहां पे ये होता है कि कोई उलमा कोई बुराई से मना कर दे तो वो उसको उठा के ऐसा गायब करते हैं, उसके बाद वो नजर ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि किधर चला गया, कत्ल कर देते हैं। इस्लाम सिर्फ नमाज रोजे और इसका नाम नहीं है, बुराई से रोकना भलाई का हुक्म देना ये उलमा का काम है, और अगर इसके ऊपर उनको कत्ल कर दिया जाए तो वो क्या काम करेंगे अपना। आज आप अपने अपनी आम जिंदगी में भी देख लें, आप किसी को बुराई से रोक के देखें फिर वो क्या करता है, चलो कत्ल ना कर सकता है आपको लेकिन फिर आपके साथ वो क्या करता है, आप नहीं कह सकते। किसी को रोकना, किसी को मना करना, किसी को सिर्फ यही कह देना कि ये बुरा काम है ये ना करो, फिर देखें। तो ये चीज आज इतनी ज्यादा हो गई है, कई हमारे मुल्क से उलमा को दूसरे मुल्कों में जाके पनाह लेनी पड़ी कि उनको इतनी धमकियां मिलने लगी। तो ये इतना बड़ा गुनाह है, और कई आप उलमा को देखें कि जिनको कत्ल कर दिया गया। आप बड़े डॉक्टर गुलाम मुर्तजा मलिक थे, हकीम सईद थे, कितने लोगों को इस तरह से कत्ल किया गया। तो ऐसे लोग जो ये काम करें, और इसमें एक ये भी बाज दफा कसूर होता है कि बाज दफा लोगों को फिरका वारियत में भी इतना उनको भड़का दिया जाता है कि वो दूसरे जाके उलमा को कत्ल कर देते हैं, या बाज दफा आम लोगों में से उनको पसंद नहीं आती कि ये बातें कही जाए। और उलमा ही नहीं, यहां पे तो ये कहा गया ना वो उनको कत्ल करते हैं जो किस्त का हुक्म देते हैं, वो चाहे उलमा है चाहे कोई और रिफॉर्मर्स हैं। आप देखें आज हमारे मुल्क के अंदर मिसिंग पर्सन का मामला क्या है, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे इदारों को कुछ ऐसा कह दिया और उसके बाद उनको उठा लिया गया और फिर वो कभी नहीं मिले दोबारा। या जब किसी का कह देना कि ये करप्ट हैं ये गलत हैं इनके इनका मुहासबा होना चाहिए तो वो उनको कत्ल कर देते हैं। कई इदारे ऐसे होते हैं आप बोल नहीं सकते उनके खिलाफ कोई, वरना फिर अपनी खैर मना लें। फबशिर हुम बिआदा बिन अलीम, तो जो इंसाफ की बात करने का हुक्म देता है, इंसाफ करने का कहता है कि इंसाफ करो भाई ये गलत है, ये तुम लोग जो कर रहे हो ये सही नहीं है, जो सोशल जस्टिस का हुक्म देता है, जो अमर बिल मारूफ का हुक्म देता है, देखिए जो किस्त है ना वो हर जगह पे ही है ना, उसके खिलाफ आवाज उठाना कि ये जुल्म हो रहा है भाई ये नहीं करो ये जुल्म है ये गलत है, फिर ऐसे लोगों को बेचारों को तो क्या उनका हाल किया जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उनका मार मार के उनका बुरा हाल कर दिया जाता है, कभी उनके बायकॉट कर दिए जाते हैं, कभी उनको कत्ल कर दिया जाता है, कभी वो मिसिंग पर्सन बन जाते हैं। आप कह के देखें कि नहीं जी आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने खानदान में कह के देखें कोई जुल्म हो रहा हो या आप इंसाफ नहीं कर रहे ये गलत है। देखिए जैसे हमने अभी बात की कि बच्चों के अंदर नहीं कोई इंसाफ कर रहा, या बच्चे वालदैन के सिलसिले में नहीं इंसाफ के साथ काम ले रहे, या सास बहू की कोई बात है वो एक दूसरे के ऊपर कोई जुल्म कर रही है, तो वहां पे आप कोई आवाज नहीं उठा सकता, वरना बायकॉट है उसका। तो सिर्फ हुकूमतों की लेवल पे नहीं, इंडिविजुअल लेवल पे भी यही हाल है। उलाइक अल्लदीन हबितत आमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरा, और जो तो कत्ल कर देते हैं उनको फरमाया फबशिरहुम, उनके लिए तो बशारत है दर्दनाक अजा की। बशारत क्यों कहा गया, बशारत तो खुशी की खबर को कहते हैं, इसलिए कहा गया कि एक तंज है उनके ऊपर कि जैसे कहते हैं ना ड्राइंग रूम की सैर जेल को कह देते हैं या थाने को, तो इस तरह से उनको कहा गया कि अब तुम्हारे लिए तो ये खुशखबरी है, फिर लो ये खुशखबरी, और उनके सारे अमल जाया हो गए दुनिया में भी और आखरत में भी, यानी उनकी नेकियों का दुनिया में भी उनको सवाब या कोई सिला नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर कोई दुनिया में अच्छा करता है ना तो उसको दुनिया में भी उसके असरात मिलने लगते हैं, उसको दुनिया में भी उसके कोई ब्लेसिंग्स उस नेकी के वो देखने लगता है, लेकिन उनके तो दुनिया में भी जाया और आखरत में तो कुछ मिलना ही नहीं। वमा लहुम मिन नासिरीन, और उनके लिए कोई भी मददगारों में से नहीं होगा, उनके लिए कोई उनकी मदद नहीं उस दिन करेगा जिसने ये हद कर दी कि उसने ऐसे किसी इंसान को कत्ल कर दिया जो किस्त का हुक्म देता है, उस बेचारे का क्या कसूर? वो तो इंसाफ का ही कह रहा है कि भाई वो जुल्म ना करो, ये गलत है, तुम फलाने मतलब हुकूमत है, आप फलां मुल्क के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं, आप ये फलां लोगों के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म हो रहा है, ये नहीं करो, ये इंसाफ करो, खैर और भलाई की बात है ना, उसके ऊपर उसको मार देना, ये कितना बड़ा जुल्म है। सोचे कि अल्लाह ताला के हाँ उसकी इतनी बड़ी सजा है जो उनको कत्ल करता है, और ये इसको कुछ समझा नहीं जाता, गायब कर देते हैं, कुछ समझा नहीं जाता। कुरान उठा के देखें कि फिर उनकी क्या सजा है। अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा? देखना, ये तरा बार बार कुरान पाक में आता है, जैसे आप 30वें पारे में भी अलम तरा कई फाला रब्बु कभी साबिर फील, तो तरा का मतलब जरूरी नहीं है कि आंखों से ही देखना, बल्कि ये भी मतलब होता है कि आपने गौर किया इस बात पे। आप जैसे तो कहते हैं देखा तुमने फलां क्या करता होता था, देखा तुमने ऐसे हुआ था मेरे साथ, तो जरूरी नहीं कि दूसरे ने आंखों से देखा हो, उसने सुना भी हो सकता है। तो गौर फिक्र करने के लिए आता है। अलम तरा इलल्लदीन, क्या तुमने देखा उन लोगों की तरफ, कौन लोग, ऊतू नसीबम मिनल किताब, जो दिए गए किताब का एक हिस्सा। इसका मतलब है कि किसी ऐसे लोगों की तरफ देखने को कहा गया है जिनको किताब का कोई हिस्सा मिला। क्या तो मुशरिक ने मक्का को तो कोई भी नहीं मिला था, किनको मिली हुई है किताब? हमसे पहले यहूदो नसारा को, ठीक है? तो उनकी तरफ इसका मतलब खास तौर पे, क्योंकि ये मदनी सूरत है, तो यहूदियों की तरफ। और ये जहन में रखिएगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान से आने वाले वफद जो है उसके सामने ये आयतें तिलावत कर रहे हैं, ये भूलिएगा नहीं, ठीक है? जो ईसाइयों का वफद आया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये आयतें उस वक्त उतरी। तो कहा जा रहा है कि आपने गौर नहीं किया, देखा नहीं उन लोगों की तरफ जो किताब का एक हिस्सा दिए गए, यानी तौरात दिए गए, इंजील दिए गए, उसको एक हिस्सा क्यों कहा गया? किताब का एक हिस्सा इसलिए कि पूरी फाइनल किताब तो कुरान करीम है, वो तो एक हिस्सा था इसका, जिसकी कंप्लीशन हुई कुरान पाक पे। दूसरा इसका मतलब ये है कि उनकी किताबें, आपको पता है, वो तो पूरी की पूरी प्रिजर्व नहीं थी, उनको जो किताब मिली थी वो तो समझ लें बचा कुचा हिस्सा थी, सब की सब खत्म हो चुकी थी। इंजील भी बाद में लिखी गई, तौरात भी, मैंने आपको इसकी हिस्ट्री भी बताई थी उस दिन, कि बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, बाद में हाफिजों से लिखी उन्होंने, 150 साल बाद अपनी याददाश्तों से लिखी। तो इनको तो इनकी किताबें तो वैसी रही ही नहीं ना। तो जब इनको किताब के एक हिस्से की तरफ बुलाया जाता है, युदाउना, बुलाए जाते हैं, इन्वाइट किए जाते हैं, इला किताबिल्ला, तरफ अल्लाह की किताब के, क्यों बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ? लियहकुमा, ताकि वो फैसला कर दे, कौन, अल्लाह की किताब, बैनहुम, उनके दरमियान। अच्छा, ये अब क्या बताया जा रहा है, यहां तक पहले हम बात समझ लें कि कहा जा रहा है आप जरा गौर करें इन लोगों की तरफ जिनको किताब दी गई। अल्लाह का कलाम मिल जाना बहुत बड़ी सआदत होती है, इस किताब का इल्म, इस किताब का कोई हिस्सा मिल जाना, ये इंसान की बड़ी खुशकिस्मती में से है, समझ ले उसके नसीब खुल गए जिसको किताब मिल गई। इनको किताब दी गई, खास तौर पे यहूद के उलमा, उनके पास किताब का इल्म था, उनके लोगों, आम लोगों के पास नहीं था, उन इनके पास तो किताब का इल्म था। फिर इनको कहा गया युदाउना इला किताबिन, इनको इनवाइट किया गया अल्लाह की किताब की तरफ, क्यों इनवाइट किया गया? लियाकुमा बैनहुम, ताकि वो किताब इनके दरमियान फैसले करे। किताब को पढ़ना अलग चीज है, समझना अलग चीज है, इसको हिफ्ज करना अलग चीज है, लेकिन इसके साथ फैसले करना ये बिल्कुल एक अलग चीज है, याद रखिए। तो इन्होंने क्या किया, इनका रवैया क्या था? सुम्मा यतवल्ला फरीक मिनहुम, तो इनके एक फरीक ने मुंह मोड़ लिया, उन्होंने कहा हमने नहीं इसे फैसले लेने, वह हम मोरिदून, और वो हैं ही कैसे, एराज करने वाले। यतवल्ला में भी मुंह मोड़ना और मुआरिदून में भी मुंह मोड़ना, एराज करना है, तो फर्क क्या हो गया? यतवल्ला इनकी करंट हालत को बता रहा है, मुआरिदून इनका ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है कि ये हैं ही ऐसे, ये हमेशा से ऐसे ही करते हैं। अब इनको किस किताब की तरफ बुलाया गया? नंबर वन, अगर हम किताब अल्लाह से यहां पे मुराद लें कि तौरात, कि इनको तौरात की तरफ बुलाया गया कि वो इनके दरमियान फैसले करे, तो इन्होंने इससे मुंह मोड़ लिया, यानी फैसलों के लिए नहीं उन्होंने रखा हुआ था किताब। इन्होंने किताब को किस लिए रखा था? पढ़े हैं उसको, चूमे हैं उसको, बड़ी इज्जत करें उसको, बड़ा सेलिब्रेट करें, दैट्स इट। फैसले नहीं, इससे फैसले नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि फैसले वो कहां से कराते? जो अपनी पसंद के फैसले होते थे वो तो किताब से ले लेते थे, जो नापसंद के होते थे वो नहीं लेते थे। जैसे कि आपको ये मशहूर वाकया के पता होगा कि खैबर के यहूद में शादीशुदा एक जोड़े ने, मैंने एक शादीशुदा दो लोग थे जिन्होंने जिना किया। अब उनके यहाँ उनकी किताब में इसका कानून क्या है? इसकी सजा रजम करना, पत्थर मार मार के मार देना, ये उनके यहाँ सजा है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल सजा है, ऐसा करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं कि वो हमारे दरमियान फैसला करें। तो यहाँ पे आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तुम्हारी किताब में इसका क्या हुक्म है? तो गोल मोल जवाब देने लगे कि आए बादशाह। तो आपने फरमाया लाओ अपनी किताब। वो किताब जब लेकर आए तो रजम की जो आयतें थी ना उनके ऊपर उन्होंने हाथ रख लिया। देखिए अभी भी चाहे बची कुची किताब मिली हुई है, लेकिन फिर भी बीच में चीजें हैं तो सही जो अभी तक भी हैं स्टिल, हाँ एडिशंस तो हैं लेकिन ओरिजिनल चीजें भी मौजूद हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हटाओ हाथ को, और वहीं रजम की आयतें थी। तो फैसला नहीं किताब से लेना, उससे एराज करना। इसी तरह उनकी किताब के अंदर था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की निशानियां थी, उससे नहीं फैसला रहे थे, अपने फैसले कर रहे थे। और अगर यहाँ पे कुरान पाक को लिया जाए, इनको बुलाया जाता है इला किताब इला, कुरान की तरफ दावत दी जाती है ताकि वो इनके दरमियान फैसला करे, तो ये मुंह मोड़ जाते हैं। इनको कुरान की तरफ नहीं आना, इनको इस किताब को नहीं मानना। देखिए अब यहां से हमें पता चलता है कि किताब के आने का मकसद क्या होता है, कि लोगों के दरमियान हक के साथ फैसला करे, ये किताब का मकसद होता है। लोगों के दरमियान जो भी जजमेंट्स हैं वो अदलो इंसाफ के साथ हों। लेकिन आज भी क्या रवैया किताब के साथ? ये तो उनका एक रवैया बताया गया ना, अपने ऊपर जरा गौर करें, हम भी तो वो हैं जिनको किताब दी गई है, नसीबन नहीं पूरी की पूरी किताब दी गई है, एक हिस्सा नहीं दिया गया। फिर हमें बुलाया जाता है युदाउना इला किताब इला, ये सिर्फ अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए रख के देखे, वो बुलाए जाते हैं अल्लाह की किताब की तरफ, याकुमा बहिना, ताकि वो फैसला करे उनके दरमियान। तो उसके बाद होता क्या है? क्या फैसले लिए जाते हैं अल्लाह की किताब से? अल्लाह की किताब किस किस चीज में फैसले करती है? अल्लाह की किताब बताती है कि तुमने तिजारत कैसे करनी है, तुमने विरासत के मामलात कैसे तय करने हैं। अल्लाह की किताब बताती है कि तुमने शादी के अब्याह के मामलात कैसे करने हैं। अल्लाह की किताब बताती है तुमने बिजनेस कैसे करने हैं, तुमने क्या खाना है और क्या नहीं खाना, तुमने कैसे रहना और कैसे नहीं रहना। उस वक्त आप बताइए कि कितने लोग हम में से हैं जो खुले दिल के साथ कहते हैं कि हाँ अल्लाह की किताब हमारे दरमियान फैसला करे, और कितने लोग कहते हैं कि अल्लाह की किताब पार्टियां करने के लिए है। ठीक है आप करें पार्टियां, जरूर करें, इसको सेलिब्रेट करें, आपने कुरान पाक मुकम्मल किया है, आपने उसको हिफ्ज किया, आपने उसको समझा है, आपने उसको सीखा है, जरूर करें। मगर क्या कुरान पाक बस इसके लिए है? क्या सिर्फ इसके लिए है कि सीखें समझें पढ़ें? समझने सीखने का कोई मकसद तो होना चाहिए ना, समझने सीखने का मकसद तो ये है कि इसके जरिए हम अपनी जिंदगी के फैसले करें, हम यहां से पूछें कि हमने कैसे चलना है। मगर होता क्या है? इस किताब से एराज, इस किताब से मुंह मोड़ देते हैं, ये होता है। और बिल्कुल सेम रवैया जो उन लोगों ने अपनाया, जबकि अल्लाह ताला ने साफ तौर पे सूरह माईदा में फरमा दिया, तीन आयतों में फरमाया वमन लम यहकुम बीमा अनजल फाउलाए कहमुल काफिर, जो अल्लाह के नाजिल करदा से फैसले नहीं लेते वही तो हैं काफिर। अगली आयत में फरमाया वमन लम यहकुम बीमा अनजल फाउलाए कहमुल दौलिमुन, जो अल्लाह की नाजिल करदा से फैसले नहीं लेते वही तो जालिम है। आयत 47 में फरमाया वमन लम यहकुम बीमा अनजल फाउलाए कहमुल फासिकून, वही तो फासिक है। कि अल्लाह की किताब को रखा हुआ है किसके लिए? बस पढ़ने के लिए, बस हिफ्ज के लिए, बस इन सब चीजों के लिए। अगर फैसला नहीं इससे लेना हमने, फैसले हम अपनी जिंदगी के खुद करेंगे, अल्लाह की किताब हमें क्यों बताएगी क्या फैसला करना है? तो ये क्या है, इसके लिए ही नाजिल हुई थी कि पढ़ा जाए, पढ़ाया जाए, हिफ्ज किए जाए, समझा जाए, लेकिन बस इसके आगे नहीं, क्लासरूम से बाहर नहीं। क्लासरूम के अंदर हम बहुत नेक हैं, मस्जिद के अंदर हम बहुत अल्लाह वाले हैं, मदरसे के हम अंदर हम सारा दिन अल्लाह की तस्बीहां करने वाले हैं, लेकिन उससे बाहर क्या है? हमारे बाजारों में क्या है? हमारे घरों में क्या है? हमारे दफ्तरों में क्या है? हमारे और बिजनेस की जगहों पे क्या है? वहां पे किताब अल्लाह फैसला नहीं करेगी, वहां पे हम खुद करेंगे। तो किताब अल्लाह तो सारे ही फैसले कर रही है, हर जगह के लिए फैसले दे रही है, ये सिर्फ मस्जिदों के फैसले तो नहीं है, क्लासरूम के फैसले तो नहीं दे रही, हर फेज ऑफ लाइफ में हमें रहनुमाई दे रही है, गाइडेंस दे रही है। क्या वाकई फिर इसका मकसद सिर्फ यही था, इसको पढ़ पढ़ा लिया जाए और सर्टिफिकेट ले लिया जाए, या इससे आगे था कुछ? ये उनको कंडेम किया जा रहा है कि देख लो इनको, इन्होंने मुंह मोड़ लिया, और ये हैं ही मुंह मोड़ने वाले, तो हम क्या हैं? किताब अल्लाह में अल्लाह का कानून है, कितने लोग हैं जो अल्लाह के कानून को नाफिज करना तो दूर की बात है, इंप्लीमेंट तो छोड़ दें, जो पसंद भी करते हो, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं जो इसको दिल से समझते हो कि ये अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कानून है, और मेरी जिंदगी में ये भी नाफिज होना चाहिए, मेरे माशरे में भी नाफिज होना चाहिए? कितने लोग हैं जो खुले दिल से ये सोचते हैं या डरते हैं? अल्लाह का कानून नहीं है। तलाक के मामलात आपने पढ़े ना सूरह बकरा में, कितने लोग हैं जो ये इन मामलात को इसी तरह डील करते हैं जैसे यहां पे बताए गए? खुद ही आप अपने माशरों से देख लें। बरमला हम कहते हैं कि नहीं जी, हम अब इस मुल्क में आ गए हैं, अब हम यहां के कानून के मुताबिक करेंगे क्योंकि यहां से हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अब नहीं, अल्लाह के कानून को हमने देखना, जहां पे हमारा मफाद होता है वहां पे हम अल्लाह के कानून की तरफ आ जाते हैं, जहां पे मफाद नहीं है वहां पे हम कहते हैं नहीं जो हम यहां के कानून को देखेंगे, ये यहां के कानून में तो इस तरह से है, और मुझे पता है कि यहां से मुझे ज्यादा मिलेगा। इसी तरह आप आगे भी पढ़ते जाएं, आप विरासत के कानून देख लें, आप सूद के आपने पढ़े वो सब देख लें, कहां से फैसले लेते हैं हम? ऐसी से अब देख लें कि फिर उसके बाद काफिरून, जालिमून, फासिकून किसको कहा गया? तीन आयतों के अंदर इतनी बड़ी बातें, और फैसला हमने यहां से नहीं लेना, लेकिन मुत्तकी परहेजगार हम सब, खुद सोचें। चले कानून बनाने में ना मेरा हाथ ना आपका हाथ, मगर दिल से तो पसंद करें अल्लाह के कानून को कि यही हक है, यही बेहतरीन है, मगर शरीयत का नाम सुनते ही, और लोगों ने तो क्या कहना, मैं किसी और से नहीं शिकायत करती, अपने मुसलमानों के मुंह ही लटक जाते हैं। हाय, अच्छा अगर शरीयत आ गई तो हमारा क्या होगा, हमें पर्दा करना पड़ेगा? अगर शरीयत आ गई तो क्या हाथ कटने लगेंगे चोर के? हाँ नहीं, हमें तो नहीं शरीयत चाहिए। ये है हमारे हाल, ये हमारी थिंकिंग, और इंडिविजुअल लाइफ में मैंने आपको बता दिया, यानी कानून की हद तक आप नहीं बना सकते, इंडिविजुअल लाइफ में कितना हम अल्लाह की किताब से फैसला लेते हैं अपने लिए, अपनी प्राइवेट डीलिंग्स में कितना अल्लाह की किताब की तरफ रुजू करते हैं, आते हैं, कितना पूछते हैं अल्लाह का कानून इस बारे में क्या है, अल्लाह की किताब इस बारे में क्या कहती है? या आपने किसी को सुनते सुना ऐसे कहते हैं? हाँ ये जरूर अक्सर सुना है, आज के फैशन क्या है, फैशन क्या कहता है, आज के रिवाज क्या चल रहे हैं, आज क्या ट्रेंड्स हैं ये कहते हुए तो सुना है, लेकिन अल्लाह की किताब क्या कहती है ये कहते हुए, ये पूछते हुए किसी को कि किसी स्कॉलर के पास कोई जाए नहीं, कुछ इल्म तो उसकी इतनी तड़प है कि मैंने वो ही करना जो अल्लाह की किताब कहती, मुझे नहीं पता तो मैं किसी से पूछूं। ये ना तो तलब है ना ऐसा कोई शौक है, कोई ऐसी तमन्ना नहीं है, बल्कि दिल तो अल्लाह ताला हम सबको माफ करे, दिल घुटने लगते हैं। क्या इनकी बातें करें अहले किताब की, हमें तो इसलिए बताया गया कि ये देखो ये रविश लेकर चले थे, उनका काम ही ये था, वो एराज करने वाले थे, तुम ना ऐसे करना। ये उनको नहीं हमें बताया जा रहा है, अलम तरह तुमने देखा उनकी तरफ, दिखाया जा रहा है वो देखो ये कैसे लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं, कैसी इनकी मेंटेलिटी है। अल्लाह ने उनको अपनी किताब दी, किताब कितनी बड़ी चीज है, अल्लाह का कलाम आया, अल्लाह फैसले करके दे रहा है। ऐसे कहने को तो बड़ा आसान है, हम अपने घरों में बैठे ये कहते रहते हैं अल हकीमू की तस्बीह, अल मुहयी अल मुमीत की तस्बीह, असलाम की तस्बीह, इतने अल्लाह के नामों की तस्बीह कर रहे हैं, जिसको आप अल हकीम समझते हैं, अल अजीज समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि हाँ उसके फैसलों से ज्यादा अल अलीम वो है, वो जानने वाला है, हर इल्म उसको है, कहते तो बहुत है, जब फैसला करने की बात आती है तो दिल क्यों घुटता है। आपने तो मानना है ना कि अल अलीम वो है, अल हकीम वो है, आपने तो मानना है ना अल वजूद वदूद वो है, फिर क्यों दिल घुटता है, अर रऊफ वो है, मानते हैं ना, घुटन फिर कैसी है। अल अलीम से फैसला नहीं लेना चाहते, अल खबीर से फैसला नहीं लेना चाहते, असमी से अल बसीर से फैसले नहीं लेना चाहते, किन से लेना चाहते हैं, वो जो हमारे जैसे कमजोर से इंसान है उनसे, जिनकी अकलें खुद सलामत नहीं है उनसे, जिनको खुद अपना नहीं पता उनसे, जिनके इल्म नाकिस है, हर रोज नई से नई बातें निकाल के ले आते हैं उनसे। तो हम अपने गिरेबानों में झांके और देखें फैसले कहां से करवाने, किधर से फैसले लेने आपने, ये वो क्यों ऐसे करते हैं, क्यों एराज करते हैं, क्या वजह है इसकी। ज़ालिका भी अन्नहुम कालू, ये वजह है, ये इसलिए वो करते हैं कि बेशक कालू वो कहते हैं लन तमस्सना नारु इल्ला अय्यामन मादूदा, हमें कोई नहीं आग छूनी, हाँ चलो छू भी गई तो क्या, गिनती के चंद दिन रह लेंगे भाई जहन्नुम के अंदर, थोड़े दिन की बात है फिर उसके बाद निकल जाएंगे। गर्रहुम फी दीनहिम मा कानू यफ्तरून, धोखे में डाल दिया उनके उनके दीन के बारे में, जो उन्होंने घड़ लिया है ना, जो ये खुद ही घड़ी हुई बातें हैं, कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं कोई इसकी दलील नहीं, कोई इनके पास इसकी एविडेंस नहीं है कि कहीं लिखा हुआ कि तुम्हें तो आग ने छूना नहीं, मस्त थोड़े दिन, ये उनकी खुद की खुद खुशफहमियां थी, खुद ही सोच लिया हम तो अल्लाह के इतने लाडले हैं, हम तो चाहते हैं, बाज दफा नेमते भी इंसान को मिल जाना तो उसका दिमाग खराब हो जाता, समझने लगता है पता नहीं मैं कितना अल्लाह का लाडला चाहता हूँ, जैसे आज किसी को माल मिल जाए, बेटे मिल जाए, घर बार अच्छा है, कारोबार बड़ा चमक रहा है, तो कहता है लो अल्लाह मेरे से खुशी खुश है, वरना मुझे उसने इतना कुछ क्यों देना था, कुछ होगा ही तो दे रहा होगा ना, तुम अपनी खैर मनाओ, देखो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, तो इंसान के खुद ही दिमाग में आने लगता है कि इतनी मुझे खुशियां और नियमतें मिली हैं तो मेरे से अल्लाह खुशी होगा, और इनका इनके को क्या मिला हुआ था, हमने सूरह बकरा में अच्छी तरह पढ़ा है, इनके पास इतने नबी आए थे, ये नबियों की औलाद थे, एक एक वक्त में इतने सारे अंबिया होते थे इनके अंदर, और नबी आना कोई छोटी बात है, तो वो कहते थे हम अंबिया की औलाद है, हम अल्लाह के लाडली हैं, चहीते हैं हम उसके, हमें वो क्यों आग में डालेगा, बस सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि चलो इनको भी इनके गुनाहों का थोड़ा सा दे दिया, चलो सिर्फ खाना पूरी करने के लिए, बस वैसे नहीं हमें कुछ, हमने कोई जहन्नुम में थोड़ी रहना। अब देखें जब यहां पे प्रॉब्लम आती है ना इस जगह पे, तब तो इंसान ना डर हो जाता है, फिर उसको कोई परवाह नहीं रहती, अल्लाह की किताब से क्यों फैसले करें, फिर वो क्या फैसले करेंगे जो हम करें खुद ही अपने लिए, जो हमें अच्छा लगता है, जो हमें बेहतर लगता है, जिसमें हमें फायदा नजर आता है, इसमें तो मेरा नुकसान हो जाएगा, जब डर खौफ ही नहीं रह गया ना पकड़ का, इस चीज का कि कोई सजा मिल सकती है, तो कौन मानेगा किसी कानून को, दुनिया में भी आप देख लें सजाएं खत्म कर दी, उन मुजरिमों को पकड़े ही ना, तो देखें क्या हाल हो जाता है। आज कोई अगर मान रहा है किसी कानून को तो किस लिए मानता है, कहते हैं डर लगता है पुलिस पकड़ लेगी, ये हो जाएगा, सजा हो जाएगी, जेल हो जाएगी, इसलिए लोग डरते हैं ना, कानून को फॉलो करते हैं। जब ये ही पता चल गया कि भाई हमें तो किसी आग ने छूना ही नहीं, हमें तो कोई सजा मिलनी ही नहीं, हमने तो वहां पे ऐसे आराम से निकल जाना, तो फिर कौन कानून को फॉलो करेगा, कौन परवाह करेगा कि वो अल्लाह की किताब से फैसले ले। और यही प्रॉब्लम आज मुसलमानों के अंदर आ गया कि उन्होंने भी ये समझ लिया कि हमें क्या, कई लोग अल्लाह रहम करे, अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब करे, कई लोग इतने आराम से कह देते हैं कि जहन्नुम के अंदर चलो गए भी तो वैसे मुसलमान है, हमने तो निकल ही आना है, यानी उनके लिए ओके है थोड़े दिन जहन्नुम में रहना। जिस जहान का एक दिन जो है हमारे 50,000 साल के बराबर है, यहां की भाई तुमसे 50-60 साल 70 साल की जिंदगी तो अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजारी नहीं जाती, यहां पे तो इतना सा अपना नुकसान तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, यहां के तो जरा से गम को तुम्हारे पर पहाड़ की तरह महसूस होते हैं तुम्हें, वहां के लिए ओके हो, ठीक है कोई बात नहीं है, जब एक दिन भी डाल दिया गया तो क्या हाल होगा। जिसको दूर से देख के भी, दूर से देख के, कोई अंदर नहीं गया होगा अभी, दूर से देख के ही सब घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और कहेंगे अल्लाह बचा ले, अल्लाह बचा ले, कितना ही औलिया अल्लाह हो। आप सोचें जिसको आप सबसे अपने समझते हैं ना कि ये फलां बड़ा नेक है, फलां बड़ा वो है, वो सब के सब का तस्वुर करें, अगर उनके जैसे लोग भी उस दिन घुटनों के बल गिरे पड़े होंगे, क्या सहाबा कराम, क्या ताबईन, क्या मुहद्दिसीन, क्या उलमा, क्या पैगंबर तक नफसी नफसी पुकार रहे होंगे, तो उस दिन आप आलम सोचें क्या होगा। ये सिर्फ जहन्नुम को देखने का, सिर्फ सीन देखा उन्होंने, सिर्फ उसको देखा अपनी आंखों के सामने, तब ये हाल होगा। अंदर जाने की तो बात अभी आप छोड़ ही दें, कितने आराम से आप कह सकते हैं फिर उसके बाद कि हाँ कोई बात नहीं है, हम तो निकल ही आएंगे ना, मतलब हम सोचते हैं कितना बुरा हो जाएगा वो अजाब, यहां पे तो मजे कर लें, यानी तुम्हें यहां का ये जितनी छोटी सी जिंदगी के मजे इतने अजीज हैं कि यू आर ओके विद दैट, कितने साल जहन्नुम के अंदर रह लो, वहां का तो एक लम्हा भी नहीं काट सकते, एक लम्हा भी। वो हदीस आप सबको कई दफा मैंने बताई भी कि एक गोता दिया जाएगा इंसान को जहन्नुम के अंदर, एक गोता, जैसे डुबकी दे के बाहर निकाल दिया, दैट्स इट। और उसे पूछा जाएगा तूने कभी राहत देखी, कभी आराम देखा, वो कहेगा मैंने तो कभी देखा ही नहीं, मुझे तो आज तक कभी कोई आराम मिला ही नहीं, ये सारे आराम, ये सारे ऐश, ये सारे मजे दुनिया के, ये वो होगा जिसने दुनिया में कभी कोई गम नहीं देखा था, जो मजों मजों में ही रहा था, ये उसका हाल होगा कि वो कहेगा कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं कोई मजा, कोई आसाइश, इतनी जल्दी रफू हो जाएंगे, इतनी जल्दी उड़ जाने हैं ये यहां के मजे एक डुबकी से। और असल में बात ये, मैंने जो आपको बताई भी थी हदीस कि जो ईमान के ऊपर जिसकी जान निकलती है सच्चे दिल से, हदीस में सच्चे दिल से इखलास के साथ जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो वो जन्नत में जाएगा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि दिल में क्या है, ईमान है कि नहीं, सच्चा ईमान है और सच्चे दिल से कह रहा है, सच्चे दिल से मतलब ये है कि वाकई वो इस चीज के ऊपर कन्विंस्ड है और वो समझता है कि वो क्या कह रहा है। अच्छा एक एक सवाल है मेरा आपसे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई मुसलमान हो मगर ईमान ना हो उसके अंदर, ऐसा पॉसिबल है या नहीं, या सब जितने भी मुसलमान है वो ईमान वाले, उनके अंदर ईमान भी लाजमी है, कोई दलील है आपके पास इसकी? देखें कुरान पाक में ही दलील है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बद्दू आके आपको कहते हैं हम ईमान ले आए, ए नबी इनसे कह दें तुम इस्लाम लाए हो, अभी ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ, समझ आई, इस्लाम लाना, कह देना ला इलाहा इल्लल्लाह ये अलग बात है, और ईमान दिल में आ जाना ये अलग बात है, समझ आई ना। ईमान में जिसके दिल में जरा बराबर भी ईमान होगा उसको भी जहन्नुम से निकाल दिया जाए। ये नहीं कहा गया कि इस्लाम होगा जिसने कलमा पढ़ा होगा। कलमा तो मैंने आपको बताया था, तोते को भी रटा दे तो वो भी पढ़ लेगा, क्या वो भी जन्नत में भागा चला जाएगा? ईमान, सच्चे दिल से ला इलाहा कहने का मतलब ये ईमान दिल में होना। तो हम ये समझ लेते ना, जबकि हमने कलमा पढ़ लिया तो ईमान खुद ब खुद आ गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, जहां इनकी ये टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करने का ताल्लुक है जहां पे, तो वहां पे जहां पे ईमान कहा गया इस्लाम उसके अंदर मौजूद ही है। ठीक है, तो ये चीज हमें भी धोखे में डाल देती है और हमें ओके हो जाते हैं कि कोई बात नहीं है, यहां का फायदा मिल जाए वहां की कोई बात नहीं, हमारे अंदर तो हम इस्लाम तो ले ही आए, में हम चूंकि रिलीजन के खाने में इस्लाम ही लिखते हैं, और मेरा नाम आयशा है, मेरा नाम फातिमा है, खदीजा है, तो मुझे क्या मसला है फिर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद चाहे इस्लाम कहीं जिंदगी में है या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा नहीं है, मैं चाहे कहने को तो वो भी अंबिया की औलाद थे, कहने को तो वो भी चुनी हुई उम्मत थे जिनका अल्लाह ताला ने कुराने पाक में फरमाया कि अल्लाह ने उनको चुना था तमाम जहान वालों पे। मामूली बात तो नहीं थी, खुद ही तो नहीं उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझ लिया था, अल्लाह ने वाकई चुना था उनको इमामत के लिए। तो जब यहां अकीदे में प्रॉब्लम आता है ना, तो सारी जिंदगी फिर शुतरे बेमुहार की तरह हो जाती है, बेकैद जिंदगी हो जाती है, फिर क्या परवाह है भाई, ये एक दिन तो निकल ही जाना हमने। अल्लाह ताला हमें जहन्नुम की एक झलक भी ना दिखाना या अल्लाह। असल में बात यह है, हमने अपनी दुनिया के हर मामले से दीन को निकाल के बाहर किया था। हम समझते हैं ना असल में कि दुनिया के मामलात अलग, दीन अलग। दीन का ताल्लुक मेरी दुनिया से नहीं है। इसी वजह से आप देखिए हर अपने शोबे में जिंदगी के, हम इसीलिए तो कुरान से रहनुमाई नहीं लेना चाहते, यहां से हुक्म नहीं लेना चाहते, क्योंकि हम समझते हैं कि इसमें कुरान का भाई क्या ताल्लुक, मेरी इकोनॉमी में कुरान का क्या ताल्लुक, मैं अपनी पार्टीज कैसे करूं, अपनी गैदरिंग्स कैसे करूं, इसमें मैं दीन का क्या काम है, इसमें बोले मैं बिजनेस करने लगी हूँ, बिजनेस दुनियावी काम है, इसमें मैं दीन मुझे क्या बताएगा अभी, चीज में मैंने पहनना क्या है, मेरा कैसे होना चाहिए, मेरा लिबास, इसमें मैं दीन से क्यों रहनुमा, मेरे एटिकेट्स क्या होने चाहिए खाने पीने के, रहने सहने के, ये मैं क्यों दीन से पूछूं, मैं क्यों कुरान से पूछूं। बस हमने क्या समझ लिया, कुरान क्या है, बस ये याद कर लेना, ये कर लेना, बस ये तर्जुमा पढ़ लेना, टेस्ट दे देना, ये कर लेना, या हमारे बांदे के सज्दे कर लिए, ये दीन हो गया, और बस इसके अलावा दीन की कोई गुंजाइश नहीं है हमारी जिंदगी के अंदर, ये हमने समझा हुआ है। तो जब समझ ही नहीं है ना, तब ये इस किस्म के रवैये होते हैं, और ये इसी वजह से है कि हमें भी खौफ कोई नहीं रह गया, डर कोई नहीं रह गया। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तिलावत सुनिए आप।
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون